कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو شخص بروز جمعہ مجھ پر سو بار درود پاک پڑے جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا دوسرا روزہ، نماز عصر پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں گی، ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئے بائے شائع کرتا، اپنے کہے پر بلا وجہ ضد کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے کاروبار میں اللہ پاک کو حصہ دار ٹھہرا لو، کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کی جو کمائی ہوتی ہے اس میں سے کچھ حصہ مختص کر لیں اور وہ اللہ کی راہ میں دیتے رہیں، پھر آپ کا نقصان نہیں ہوگا، تو یہ ایسا کرنا کیسا ہے؟
اچھی بات ہے، راہ خدا میں دینے سے تو واقعی یعنی کہ بہت سارے فوائد ہیں، جن میں یہ بھی ہے کہ مال میں کمی نہیں آتی، نقصان تو نقصان بلکہ انشاءاللہ سے برکت ملے گی، ہو سکے تو گوشت پاک کے سال ثواب کے لیے زیادہ نہیں تو اپنی بکری کا 1% ہی نکال دیں، 100 پر 1 روپیہ جمع کرتے رہے پھر گوشت پاک کے سال ثواب کریں، انشاءاللہ بہت برکت ہوگی۔ زیادہ دینا چاہیں 2% نکال سکتے ہیں، نوکری والے ہیں وہ بھی اپنا اسی طرح سے کچھ تنخواہ میں سے حصہ نکالیں، بیچنے والے اپنی بکری کا جو مطلب جتنی رقم آتی ہے سیل ہوتی ہے اس رقم پر 1%، اس کی نیاز بھی کر سکتے ہیں، اس کو غریبوں کو دے دیں، سادات کرام کو نظر کر دیں، کتابیں بانٹ دیں دینی، مسجد کے چندے ہی میں ڈال دیں، اس طرح کر دیں، بہتر وہی ہے کہ کھانا پکا کر کھلایا جائے، نیاز باقاعدہ فاتحہ پڑھ کے، تو اس سے کیا بچوں کا بھی ذہن بنے گا گوشت پاک کی نیاز ہے، ہر مہینے کر دیا کرے، 11ویں پر جمع کر کے مہانہ 11ویں بھی یوں مطلب ایک جاری رہے گی انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا امیرِ اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، کیا فرض روزے اپنے مرحومین کو اس سال ثواب کی نیت سے رکھ سکتے ہیں یا صرف نفلی روزے؟ جو آپ عنایت فرما دیجیے۔
یہ سب یعنی فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، فرض حج ہے، فرائض و واجبات سب کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، یہ مستحب ہے، صلاۃ الوالدین بے شک روز پڑھے 2 رکعت نفل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
मेरा हजरत साहब से ये सवाल है कि जक़ात किस मैयत के बाद जाके फर्ज होती है, क्योंकि खास तौर पे औरतों के लिए आप रोशनी डालें कि वो बचपन से लेके जब से उनकी शादी होती है वो उस वक्त से कुछ ना कुछ जमा करके साइड पर रख रही होती हैं, और जब उनके घर बेटी की औलाद होती है तो उसमें ज़्यादातर ये होता है कि वो अपने बच्ची के लिए जहेज के लिए जमा करते 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 वो एक अच्छी खासी मकदार पे अमाउंट जमा हो जाती है, जेवर की मद में या कपड़ों की मद में या किसी भी चीज़ की मद में, तो उस पर क्या ज़कात फ़र्ज होती है उन पर या नहीं?
अगर औरत का भी अगर निसाब पूरा हो जाएगा जैसे 7.5 तोले सोने या 52.5 तोले चांदी या इसकी रकम हो जाए इतनी करेंसी माल तजारत है, फिर वो एक अलग सूरत है। तो ये माल जमा करने की जो आप कह रहे हैं, तो इतनी माल अगर जमा हो जाए और वो हाजत असलिया ने जो जरूरतें हैं इससे हटकर है, वो कर्जे में भी डूबी हुई नहीं है कि कर्जा देगी तो उतना इसके पास माल बचेगा नहीं, तो वो इतना माल अगर जमा किया उसने जिस पर जकात की निसाब हो गई पूरी जो मैंने अर्ज की, तो अब जिस तारीख को जितने बजे, जैसे कि समझो कि रजब की 3री तारीख को इसके बाद इतनी रकम जमा हो गई, 3री तारीख को दोपहर के 3 बजे इतनी रकम की ये मालिका बनी, तो अब आइंदा साल इस रजब की 3 तारीख को 3 बजे इस पर जकात फर्ज हो जाएगी। तो वह जितने सालों की नहीं दी तो सारे सालों का हिसाब करके जकात तो देनी होगी। ये दलील नहीं चलेगी कि औरतें ये दलील देती हम कमाती नहीं है, कमाने से नहीं, किसी ने गिफ्ट कर दी तब भी वो निसाब में तो शामिल होगी, कमाए ना कमाए शर्त नहीं। सोने के सेवरात जो औरतें पहनती हैं ये भी जकात में काउंट होंगे, इसका भी इसकी भी जकात देनी पड़ेगी, जबकि वही जो मैंने निसाब की सूरत बताई ये शराइत पाए गए तो बेटी के लिए जैस के लिए रखा है, और ये दलाल नहीं चलेंगे बेटी का फर्ज अदा करना है वगैरह, या वह हम इस पर हज भी नहीं करते इस तरह, नहीं हज फर्ज हो गया तो अब करना ही पड़ेगा चाहे वो बेटी बैठी है या बेटा बैठा है।
इस मसले में एक सूरत मजीद भी पाई जाती है जिसमें आवाम गलत फहमी का शिकार होते हैं, सोना 7.5 तोला से कम नहीं था, लेकिन जो दिगर चीज़ें हैं माल तजारत या करेंसी या चांदी वो थे और वो भी निसाब से कम थे, तो फिर दो चीज़ों को मिलाकर चांदी के निसाब पर पूरा उतारेंगे, यानी अगर 52.5 तोला चांदी की मालियत को पहुँचते हैं तो फिर भी जकात देनी होगी। तो 1 तोला सोना है किसी के पास 10,000 रुपये हैं, मिसाल है 10,000 वरना 150 रुपये हैं तो वो भी मिलाने पड़ेंगे, तो ये मिलाकर 1 तोला सोने के साथ 52.5 तोला चांदी के निसाब से ज़्यादा ही रकम बनेगी।
मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है, मैं इस वक्त हूँ ओमान में, मेरा फितरा पाकिस्तान में बनेगा या हम ओमान में निकलेगा, इसकी रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकुल्लाह खैरा।
ओमान में तो ओमान के हिसाब से जो भी गेहूँ और खजूरें और किशमिश वगैरह का जो भी आप देना चाहें तो वहाँ की कीमत के मुताबिक अदा करेंगे।
जी सवाल ये है कि अगर बंदे का रोजा हो तो वो आंखों में सुरमा डाल सकता है या टूथ ब्रश कर सकते हैं कि नहीं?
आंख में सुरमा डालने में हर्ज नहीं है, टूथ ब्रश में अगर पेस्ट भी लगाई है तो इससे तो बचना होगा कि बहुत खतरा है कि इसके जर्रात जो है ना ये हल्के नीचे उतर जाए, तो अब अगर हल्के नीचे उतर गया तो फिर तो रोजा टूट जाएगा।
रोज़ा टूटने के ताल्लुक से कुछ सवालात हमें सोशल मीडिया के ज़रिए मिले हैं, तो इसका ताल्लुक रोज़ा टूटने वगैरह के ताल्लुक से है, मैं चंद एक सवालात आपसे कर लेता हूँ। क्या थूक या बलगम निगलने से रोज़ा टूट जाता है?
मुंह के अंदर का थूक या बलगम निगल लिया रोज़ा नहीं टूटेगा।
क्या तेल और खुशबू लगाने से रोज़ा टूट जाता है?
नहीं टूटता।
क्या गैर ज़रूरी बाल जिस्म से जुदा करने से रोज़ा टूट जाता है?
नहीं टूटता।
क्या रोजे की हालत में मिसवाक करने से रोजा टूट जाता है?
नहीं टूटता।
क्या नाखून काटने से रोजा टूट जाता है?
नहीं टूटता।
क्या खून टेस्ट करवाने से रोजा टूट जाता है?
नहीं टूटता।
क्या इंजेक्शन ड्रिप लगाने से रोजा टूट जाता है?
नहीं टूटता।
क्या रोजे की हालत में नहाने से क्या रोजा टूट जाता है?
नहीं टूटता।
क्या रोजे की हालत में कुल्ली करने से रोजा टूट जाता है?
नहीं टूटता।
क्या बच्चे को दूध पिलाने से रोजा टूट जाता है?
नहीं टूटता।
क्या सुरमा लगाने से रोजा टूट जाता है?
नहीं टूटता।
बुखार चेक करने के लिए अगर थर्मामीटर मुंह के अंदर दाखिल किया तो क्या रोजा टूटेगा?
नहीं टूटेगा।
शुगर टेस्ट कराने से रोजा टूटेगा?
नहीं टूटेगा।
लिपस्टिक लगाने से क्या रोजा टूटेगा?
नहीं टूटेगा। लेकिन लिपस्टिक में यह है कि अगर आदत है होंठों को जबान फेरती है और लिपस्टिक का असर हल्क में महसूस हो गया, इतनी उतर गई, तब रोजा टूट जाएगा।
रोजे की हालत में अगर गुसल फर्ज हो गया तो क्या रोजा टूट जाएगा?
नहीं टूटता।
इंसुलिन लगाने से क्या रोजा टूटेगा?
नहीं टूटेगा।
ये इरशाद फरमाइए कि उल्टी आने से क्या रोजा टूटेगा?
नहीं टूटेगा।
सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
खतून जन्नत हजरत फातिमा की सीरत से हर बेटी को बाप की इज्जत करने और बाप का हुक्म तस्लीम करने में क्या कुछ सीखने को मिलता है? बाप बेटी की मोहब्बत कैसी हो? बेटी बाप का मिजाज और तबीयत किस हद तक समझे?
ये तो बुलंद और बाला हस्तियाँ हैं। बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद मोहतरम सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इनकी मोहब्बतों के और आपस में शफकत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन पर और इनकी मोहब्बत, फिर इनकी अकीदत, फिर एहतराम अदब, इनकी जो रिवायात हदीसों में मौजूद है जिनसे एक जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए तो बीबी फातिमा हाजिर होती हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर इनको शफकत फरमाते हैं, चूमते हैं, कभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं बीबी फातिमा उठती हैं और इस तरह चूमती हैं। तो इस तरह मतलब ये कि इनके तो बहुत ज़्यादा मतलब बीबी फातिमा रिस्पेक्ट करती थी। अब्बू भी थे, वालिद मोहतरम भी थे, नबी भी हैं, रहमतुल्लिल आलमीन भी हैं, आखिरी नबी भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यूँ आपस में मोहब्बतों से जाहिर के हर एक को दर्श लेना चाहिए कि बाप बेटी, बेटी बाप का एहतराम करे, बाप बेटी पर शफकत करे, तो जब दोनों तरफ से होगा ना तो मोहब्बत का रिश्ता मजबूत होता है। अब बेटी मोहब्बत करती रहे, बाप डांट डपट करता रहे तो फिर बेटी के दिल में मोहब्बत कैसे बढ़ेगी? कम होने का ही चांस रहेगा। इस तरह माँ बेटियों को भी ख्याल रखना चाहिए कि बेटी बिल्कुल माँ का एहतराम करे, भले बाप ने डांटा तब भी बेटी तो एहतराम करेगी, लेकिन ये ज़रा जनरली समझ में आती है कि बेटी के दिल में मोहब्बत कम होगी, नफरत का बीज दाखिल हो जाएगा। जरा माँ भी बेटी को डांटे नहीं बिला वजह, बल्कि इसको शफकत देती रहे, बेटी माँ की रिस्पेक्ट करती रहे, अदब करती रहे, खिदमत करती रहे माँ बाप की, तो अल्लाह करेगा तो घर अमन का गेवारा बना रहेगा, लड़ाइयाँ नहीं होंगी। कभी एक फरीक कुछ कह भी दे तो दूसरा फरीक अगर रिप्लाई ना करे ना, तो खामोशी से सुन ले या मुस्कुरा के टाल दे, तब भी झगड़े का इलाज हो सकता है, ऐसा होता नहीं है। एक अगला एक कहता है तो दस सुनता है, फिर वो मसाइल पर मसाइल खड़े हो जाते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज जो रात आ रही है तीसरी, तो हजरत सैयदा कौनैन खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की यौम वफात है आपका, और आज एक बहुत बड़े आलिम दीन जिनका अक्सर हमारे यहाँ तस्करा आप सुनते भी रहते हैं, मुफस्सिर शहीद हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह, इनका भी तीन रमजान को इंतकाल हुआ था आपकी वफात, तो आज की रात इनके भी उर्स की रात है।
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाल्लाह घर गृहस्थी के ताल्लुक से मदनी पूरा ताफर, वालिदैन औलाद की गलती पर कमजोरी पर इस्लाह भी करते हैं, टोकते भी हैं, समटाइम इनको डांट भी देते हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि जब कोई अच्छा काम कर ले, बेहतर काम कर ले, तो उस तरह की हौसला अफजाई वालिदैन नहीं कर पाते कि उसको लगे कि चलो मैं अगर गलत काम हुआ तो डांट पड़ी, तो लेकिन अच्छा काम हुआ तो चलो एक कम अज़ कम उसी वजन की हौसला अफजाई भी तो हुई, शाबाशी भी तो मिली। तो ये वालिदैन में आदत पैदा हो जिन में नहीं है, तो इसके लिए क्या सूरत है?
सर बाज़ों की आदत मुझे अंदाजा हो रहा है कि बस वो नक्श से निकालने की आदत होती है। अच्छा भी काम करेगा ना उस पर गौर करेगा कि कहीं से कोई कमजोरी हो ना तो उसको वो बता देगा कि इसमें ये है ना। हौसला अफजाई का जहन वाकई बाज़ों का नहीं होता, बाज़ों का होता भी है, तो इसलिए होना तो ये चाहिए कि 99 बार 99 टाइम हौसला अफजाई करे, और जरूरत हो सख्त जरूरत तो एक बार डांट पिराए। इतना असर पड़ेगा उस पर, इतना असर पड़ेगा कि उसका नदामत से सर नहीं उठेगा। अब दिन में 99 टाइम अगर डांट डपटी की तो एक बार हौसला अफजाई कर भी दी तो कोई खास धुलाई होगी नहीं, जो मतलब उसके दिल पे मेल जमी है उसकी। डांट डपट कभी कभार सख्त जरूरत के, सिर्फ जरूरत के मौके, सख्त जरूरत के मौके पर फिर बड़ा फायदा होगा इसका, इस्लाह बहुत अच्छी तरह होगी। हौसला अफजाई से दुनिया का निजाम बहुत अच्छा चलता है। सेठ भी बॉस भी अगर हौसला अफजाई करेगा तो मुलाजिम उम्मीद से ज्यादा काम कर देगा, डांट डपट कर देंगे तो खौफ से करेगा लेकिन वो कुछ ना कुछ गुंडा करता रहेगा, साथ में खराबियां करता रहेगा। मौके की मुनासिबत से हो मतलब सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
या सैयदी, क्या जकात सगे रिश्तेदारों को दे सकते हैं?
जकात
सगे रिश्तेदारों को,
सगा रिश्तेदार, सगा यानी रिश्तेदार, तो रिश्तेदार को जकात सूरत है इसकी, जैसे कि भाई बहन को दे सकता है ना, माँ बेटा, बाप बेटी एक दूसरे को नहीं दे सकते, उसूल और फरा में, उसूल उसूल में नहीं दे सकते, फरा भी होगी ना, फरा यानी कि मतलब बाप दादा परदादा माँ नानी पर नानी तर नानी इस तरह, और बेटी नवासी पर नवासी पोता पर पोता, ये जो उसूल और फरा कहलाते हैं, उसूल माने जड़, फरा माने शाख, तो इनमें मतलब ये कि वो जकात नहीं दे सकते, भाई बहन को दे सकते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते, मियाँ बीवी को हम दे सकते हैं अगर वो हकदार है तो, मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते।
हुजूर ये इरशाद फरमाएं कि रोजाना कितना सदका करना चाहिए?
अब इसकी मकदार तो तय नहीं है लेकिन रोजाना सदका कुछ ना कुछ करता रहे तो इसके फवाइद हैं। सदका रद्द बला है, बलाएं टलती रहेंगी। हदीस पाक में ये भी है कि अपने मरीजों का सदके के जरिए इलाज करो। अब मुश्किल ये कि हमारे यहाँ मेमन कम्युनिटी में तो मैंने नोट किया सदका यानी काला बकरा, तो यहाँ काला बकरा मुराद नहीं है। काला बकरा हो, एक भी बाल सफेद ना हो, काली मुर्गी हो, एक भी पर सफेद ना हो, इस तरह की ये जो बाबा जी होते हैं ना इन लोगों के यहाँ, ये होता होगा कोई इसका मतलब सबब, वो इस तरह का बताते हैं यूं कर लो, कोई इलाज की सूरत तो हरज भी नहीं है इसमें। तो सदके से मुराद यही नहीं है, या आटा और बीच में अंडा और तेल की कटोरी रखकर भी हमारे सदका दिया जाने का बचपन में जो देखा वो बता रहा हूं, अब हो सकता है कोई सूरत बदल गई हो या वही चल रही हो, यह भी दुरुस्त है, वह तो सदका ही है लेकिन यही सदका नहीं है। हमने जो भी अपने मतलब देखे किसी गरीब को जैसे हमने खैरात दी तो ये भी सदका है, बल्कि और भी सदके हैं, किसी मुसलमान के सामने मुस्कुरा कर देखना ये भी सदका है, मुसलमानों के रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज हटा देना कि ताकि उसको तकलीफ ना हो, साइड पे कर दी, ऐसी जगह कर दी कि जहाँ किसी को तकलीफ ना हो, तो ये भी सदका है। ये नहीं कि रोड पर पड़ी है तो हटा कर साइड किसी के घर के दरवाजे के आगे कर दी, तो ये तो और खतरनाक हो गया कि अब तो घर वाला निकलेगा तो सीधा उस पर पैर पड़ेगा और बेचारा तकलीफ में आ जाएगा, इसलिए साइड पर ऐसी जगह करनी है जहां किसी को भी तकलीफ ना हो, यह सदका है।
حضور یہ ارشاد فرمائے کہ برے دوستوں سے جان کس طرح چھڑائیں؟
یہ کہ جان چھڑانا بعض چیزوں سے مشکل ہوتا ہے، لیکن بعض چیزوں سے تو ڈاکٹر جان چھڑوا دیتے ہیں۔ سگریٹ پیتا ہو، بھلے روز کی 100 سگریٹ پیتا ہو، ڈاکٹر بول دے نا کہ اب وہ کینسر کا خطرہ علامات نظر آ رہی ہیں آپ پہ، ٹیسٹ فلا فلا ٹیسٹ ہوگا، بایوپسی ہوگی، خطرہ ہے۔ اب سگریٹ تو اب بالکل، ڈاکٹر صاحب سگریٹ کو دیکھوں گا بھی نہیں، خلاص سگریٹ سب سے بالکل دیکھے گا بھی نہیں، وہ چھوڑ دے گا۔ ڈاکٹر سگریٹ چھڑا سکتا ہے، ہم لوگ نہیں چھڑا سکتے۔ پان گھٹ کے کیس دیکھے میں نے، وہ سمجھاؤ تو ہنس کے ٹال دینا ہے، پھر ڈاکٹر نے وارننگ دینی ہے تو خلاص ڈاکٹر صاحب اب نہیں، تو وہ نہیں کھاتے پھر۔ تو اسی طرح مطلب یہ کہ برے دوست کو ہم لوگ سمجھاتے رہتے ہیں کہ چھوڑ دو۔ ارے بھائی دعائے قنوت میں روز تو وعدے کرتے ہو، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، کہ میں یا اللہ میں تیرے نافرمان بندوں کو چھوڑتا ہوں، یہ روز وعدہ کرتے ہو لیکن وفا نہیں کرتے وعدے کا۔ اور یہی برا دوست دیوالیاں نکال دیتا، سارے پیسے کھا کے بیٹھ جائے، پھر ہم بولیں گے کہ دوستی کرو تو بھی نہیں، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، منہ توڑ دوں گا، پولیس میں اس کو پکڑوا دوں گا، یہ کر دوں، جان سے مار دوں گا، بالکل میرا سارا مال لوٹ کے چلا گیا۔ تو وہ ایک گجراتی کہاوت ہے، ہمارے مہمانوں میں بلکہ کہاوت ہے کہ واریے نہ وریو ہاریے وریو۔ ارے سمجھایا، منایا، مانا نہیں، کتنا سمجھا نہیں مانا، لیکن جب ہار گیا تو اب اس کو عقل آ گئی، اب مان گیا۔ تو اب یہ کہ کوئی وہ دوست کی وجہ سے کوئی نقصان کا پتا چلے، جیتے جی نہ بھی پتا چلے تو مرنے کے بعد اگر پتا چلا تو بہت دیر ہو چکی ہوگی، یہ بہت خطرناک ہے۔ بری دوستی جو ہے نا یہ ہے خطرناک۔ روز ہم جو نمازی ہیں وہ روز وتر میں جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں اس کو چھوڑتا ہوں، پھر وہی دوست اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر وہ گپ شپ میں لگ جاتا ہے۔ بے نمازی برا نہیں ہے کیا؟ فلمیں ڈرامے دیکھنے والا برا نہیں ہوتا؟ گالیاں بکنے والا برا نہیں ہوتا؟ تو کتنی برائیاں آج کل دوستوں میں پائی جا رہی ہیں، انہی دوستوں میں جا کر تو ہم لوگ بیٹھتے ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر شیطان تجھے بلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ۔ تفسیرات احمدیہ کے حوالے سے عرض ہے کہ یہاں ظالم سے مراد غیر مسلم، بد مذہب اور فاسق ہیں۔ فاسق وہی گناہ کرتے ہیں، یا بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، چھوٹے گناہ پر جس نے اصرار کیا، نے بار بار کیا اس کو، تو وہ بھی فاسق ہو جاتا ہے۔ اسوں کی صحبت سے قرآن نے بھی ہم کو روکا ہے۔ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے۔ تو جو برے دوست ہوتے ہیں، جو دین کے دشمن ہوتے ہیں، جو گستاخ رسول ہوتے ہیں، جو گستاخ صحابہ و اہل بیت ہوتے ہیں، یہ سب برے لوگ ہیں۔ ان سب جو مطلب اللہ اور رسول کا نہیں، ہمارا نہیں ہے، وہ نہیں ہو سکتا کبھی ہمارا۔ اسی طرح جو اللہ اور رسول کے نافرمانیاں دھڑلے سے کرتے ہیں، بے باقی کے ساتھ کرتے ہیں، تو ان سے دوستی کیا کرنی تھی یار؟ تو اچھا دوست اچھا ہوتا ہے، اور برے دوست سے اکیلا ہونا اچھا ہوتا ہے، ورنہ برا دوست جو ہے نا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ ایک شعر ہے فارسی کا، شعر تو پورا یاد نہیں ہے مجھے، تاہم اس میں یہ کہ یار بد یہ جو ہوتا ہے، یہ مارے بد سے بدتر ہوتا ہے۔ مار مانے سانپ، فارسی میں سانپ کو بولتے ہیں، مارے بد مانے برا سانپ، یار بد مانے برا دوست۔ تو مارے بد جو ہے برا سانپ، یہ زیادہ زیادہ جان لے لے گا تیری۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ زیادہ تیری جان لے لے گا، لیکن برا دوست جو ہے یہ یاد رکھ، برا دوست تیرا ایمان لے لے گا۔ قرآن کریم میں بھی ایک واقعہ ہے، وہ या वैलता लैतनी लम अत्तखिज फुलानन खलीला। वो उकबा बिन अभी मुईत ये मुसलमान हो गया था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर मुसलमान हो गया था ये, मगर इसने अपने गैर मुस्लिम की दोस्ती नहीं छोड़ी, दोस्त इसको ताने देते रहे, बहकाते रहे, आखिरकार ये मुर्तद हो गया, इस्लाम से फिर गया। तो इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम से फिरना ये ज्यादा सख्त है, यानी जो बराए रास्त पैदाइशी जो होते शुरू से ही गैर मुस्लिम होता है, इससे खतरनाक ये गैर मुस्लिम है जो मुर्तद, जो फिर गया इस्लाम से आकर। इसके बारे में ये कुरान करीम में कि ये कयामत के दिन जब अजाब देखेगा तो ये कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज फुलानन खलीला, हाय अफसोस काश मैं फुला को दोस्त ना बनाता। तो इसमें हम सबको इबरत है ना, अच्छे खासे नमाजी है, बेनमाजी की सोबत में रहकर कहीं हम बेनमाजी ना बन जाए, अच्छा खासा मोहतात अंदाज था इसकी सोबत में रहकर गालियां ना सीख जाए, फिल्में ड्रामे देखना ना सीख जाए, नई नई फिल्मों की मालूमात इसके जरिए होती है, देखने का जी ललचाता है। ये मैं समझाने की रिहर्स कर रहा हूँ, तो ऐसा हो कि कयामत के दिन हमें पछताना पड़े, ऐसा दोस्त हमें बर्बाद ना कर दे। तो एतिकाद में भी जो बरकतें हासिल होती हैं, इस्लाह का जज्बा होता है कि अब तो मैं दाढ़ी भी रखूंगा, अब तो जमात से नमाज पढ़ूंगा, अब तो तहज्जुद भी पढ़ूंगा, लेकिन बाद में जब अपनी उसी पुरानी गैदरिंग में जाते हैं ना, ए मुल्ला बन गया है वही दाढ़ी इमामा, अरे उतार यार ये दौर नहीं है इमामे का, क्या जमाना है ये फुला है। घर में बोलेंगे शादी के बाद रखना दाढ़ी, अभी रख ली दाढ़ी, चारों तरफ से जो है ना शैतान मुख्तलिफ जराए से आप पर हमले करेगा, जब एतिकाफ से बाहर जाएंगे ना तो ये ना दाढ़ी रखने देते हैं, ना इमामा बांधने देते हैं, ना मतलब जुल्फे रखने देते हैं, ना कोई सुन्नतों भरा लिबास पहनने देते हैं ये मुआशरे के लोग, और दीन की बात कर रहे हैं मौलाना चुप कर आए मुल्ला अबस कर, अब इस तरह ये आपके दोस्त आपको हो सकता है टॉर्चर करें, मगर आप हैं कि इनके पीछे हाथ बांधे फिरते रहेंगे, खुशामद करते रहेंगे, मजा आता है ना चुटकुले सुनने को मिलते हैं, हा 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 करके हंसने के लुत्फ उठाते हैं, लेकिन ये सारे अंदाज बहुत रुलाएंगे, याद रखिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु
कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में,
कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में।